इस्लाम में दुआ की अहमियत क्या है? हम जैसे अभी बात हो रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आती है, तो क्या इसके लिए खुद दुआ करनी चाहिए या हिदायत खुद से भी आ सकती है?
नहीं, देखिए, हिदायत के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी सच्ची तलब रखें। कुरान मजीद ने एक मकाम के ऊपर इसको तीन स्टेप्स में बयान किया है, यानी आप जानना चाहें पहली शर्त ये है, आप समझना चाहें दूसरी शर्त ये है, और फिर आप मानने के लिए भी तैयार हों कि अगर समझ में बात आ गई तो मैं मान लूँगा। यानी ये तीन शर्तें अगर पूरी ना हो तो दुनिया का कोई शख्स किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो आप निकलेंगे तो इसमें ज़ाहिर है, जब आप निकलेंगे तो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जैसे ही आपका इरादा होता है, आपका आज़म होता है, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है नेकी और खैर के कामों में। उसके लिए दुआ भी की जाती है। दुआ किस लिए की जाती है कि परवरदिगार, जो ताकत मेरे पास थी, जो वसाइल मेरे पास थे, वो मैंने लगा दिए, अब इसमें से रास्ता आपने मुझे देना है, क्योंकि ये दुनिया मेरे काबू में नहीं है। मैं पूरा इरादा भी कर लूँ तो रस्ते में हज़ार रुकावटें खड़ी हैं, उनको दूर कौन करेगा? उसके लिए मुझे अपने रब से दुआ करनी होती है। अच्छा, ये तो हिदायत की दुआ है, जिससे अच्छी कोई दुआ नहीं है। ये आप रोज़ नमाज में करते हैं, जो सूरह फातिहा है, इसी वजह से ये सबसे बड़ी दुआ है, ये हिदायत ही की दुआ है। और हमें सिखाया गया है कि हम हर नमाज में पांच वक्त ये दुआ करें, और उसके साथ एक बड़ी उम्दा तालीम ये दी गई है, फ़ौरन बाद हम कुरान पढ़ते हैं, ताकि लोगों को ये बताया जाता रहे कि वो हिदायत कहाँ पाई जाती है, जो दुआ की गई थी वो दुआ कैसे कबूल हो गई, ये दुआ है तो इस दुआ का जवाब क्या है। तो हिदायत अल्लाह की मौजूद है, जब आप दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं, बशर्ते के वो शर्तें पूरी हो जाएं, यानी आप जानना चाहें, आप समझना चाहें, आप मानना चाहें। आपने बारह देखा होगा, लोग बहस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, होता क्या है, इनमें से कोई शर्त नहीं पूरी हो रही होती। यानी या तो ये होता है कि वो बैठे ही होते हैं कि नहीं, इनके बारे में हमने सुन रखा हुआ है, हमें मालूम है ये गुमराह आदमी है, तो हमने तो असल में ये जानना ही नहीं है। इसके आगे फिर ये है कि जानना ही नहीं, आप बात समझना भी चाहें, समझना चाहें, इसमें ज़रूरी होता है कि अपने दिमाग को बंद करें, जो तासुबात हैं उनको अलग करें, पहले बात को सुने जैसे कि वो है, पहले दूसरे से 10 सवाल करके उसकी बात को समझें, फतवा लगाने, हुक्म लगाने से पहले जाने तो कि आदमी क्या कह रहा है, तो समझना चाहें। और फिर उसके बाद ये है कि आपने ये सब कुछ कर लिया लेकिन इरादा किया हुआ कि माननी नहीं है, तो कौन मनवाए?
ऐसा भी होता है, बिल्कुल सही है।
तो वो कुरान ने कहा है कि ले कौमी या लमून, ले कौमी यफकहून, ले कौमी यूमिनून, हिदायत पानी है तो इन तीनों मराहिल से गुजरना होगा।
अच्छा, इसकी ज़रा ये भी वजाहत कर दीजिएगा, एक शख्स है कि जो इन तीनों मराहिल से गुजरता है और बड़ी दयानतदारी से वो एक शख्स का मौकिफ सुनता है, लेकिन और वो दयानतदारी से सुनने के बाद भी इस नतीजे पर पहुँचता है कि भाई मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही, इन्हें समझ नहीं आ रही, वो ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझना ही नहीं चाह रहा, नहीं समझ आ रही, ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा?
देखिए, बात यह है कि ये तो वो एक नेक नियत आदमी है ना, उसने अपने बातिन में कोई रुकावट नहीं रखी, नहीं समझ में आ रही तो वो इल्म का मुसाफिर है, समझने का अमल जारी रखे,
ठीक।
यानी वो फिर ये नहीं करेगा कि आपका सर फाड़ने के लिए निकल कर,
सही, ठीक, बिल्कुल।
वो समझना चाहे कि शर्त पूरी कर रहा है और खड़ा है, सही समत में मुंह करके खड़ा है, जानना भी चाहता है, समझना भी चाहता है, वो एक तालिब इल्म है। तो तालिब इल्म के ऊपर तो खुदा की रहमत होती है, हो सकता है सारी जिंदगी इसी सफर में गुजर जाए।